तीसरा सेशन है किताब के मुताले को लेकर, जो कि 250 साल इंसान जैसी एक बहुत ही अहम किताब के ऊपर हम ये तौफीक हासिल कर रहे हैं, जो उर्दू जबान में जिसका पहला हिस्सा तर्जुमा हो चुका है। ये जो किताब है, दर हकीकत बहुत सारे आर्टिकल्स या ज़्यादातर जो है तकारीर और खताबात से इकट्ठी की गई हैं। अगरचि खुद रहबर की जो किताबें हैं, इनकलाब से पहले की जो किताबें हैं, वो तकरीबन एक दर्जन से ज़्यादा हैं जो आपने तालीफ की हैं या आपकी तकारीर को उस ज़माने में ला के तहरीरी शक्ल में सामने लाया गया था। क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि रहबर उन सेलेक्टिव और चुनीदा कुछ दानश्वरों और उलमा में से थे जिनको लोग बेनवान एक दानश्वर मुफक्किर, एक ऐसा फ़र्द जो कि माशरे में बेदारी के अमल को फिक्री लिहाज से, इल्मी लिहाज से बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, इस इनवान से ये रहबर की शख्सियत सामने थी। जैसे शहीद मुर्तज़ा मुताहरी थे, या शहीद डॉक्टर बहेश्ती थे, या इराक में जैसे आयतुल्ला शहीद बाकरुस सदर जैसी शख्सियात थीं, या सुन्नी दुनिया में सैयद कुतुब और महमद कुतुब और इस तरह की शख्सियात थीं, लेबनान में बहुत सारी शख्सियात थी। इसी तरह बाज़ जो तालीफ़ात हैं वो आपकी ट्रांसलेट प्लस तालीफ है, यानी तर्जुमा किया है अरबी जबान से फारसी जबान में, और साथ में जो है आपने इजाफा भी कर लिया उसके ऊपर, जहाँ देखा कि मुअल्लिफ ने कहें पर कमी बेशी की है, या कहें पर जो है मुअल्लिफ ने सही तरह चीज़ों को पेश नहीं किया है, जिनमें सैयद कुतुब जो कि इख़वानुल मुस्लिमीन के एक दानश्वर थे मिस्री, उनकी किताब है दीन के मुस्तकबिल को लेकर। इसी तरह लेबनान के एक शिया आलिम दीन हैं, शेख रजा अल यासीन, मशहूर शख्सियत है, उनकी किताब है सुले इमाम हसन के ऊपर। इसी तरह और भी किताबें हैं इस्लामी, यानी इस्लामी तहजीब के सामने जो मुश्किलात हैं उसको लेकर हैं। ये सारी किताबें, तफसीर कुरान है, ये सारी किताबें इंकलाब से पहले की हैं। और एक और किताब जो कि एक अरब राइटर की है, अब्दुल मुनीम नमर की, जो कि किफाहतुल मुस्लिमीन फी तहरीर अल हिंद, यानी मुसलमानों का किरदार बरसगीर की आज़ादी में, या हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। इसमें एक खूबसूरत काम जो रहबर ने इनकलाब से पहले किया था, तर्जुमे के साथ फिर आपने इजाफा भी कर दिया था और उस किरदार को मजीद खुलकर सामने लाया था। बहरहाल हम इस वक्त 250 साल इंसान किताब के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, तीसरा सेशन है, और हम पहुंचे हैं इसमें सीरत सय्यदा कायनात फातिमा जहरा सलामुल्लाहि अलैहा के हवाले से। मुतासिफाना पहले एडिशन में बहुत ज्यादा डेटा नहीं है जनाब सय्यदा कायनात की शख्सियत को लेकर। अलबत्ता आपकी जो जाती फजाइल और बरतरी और जाती कमालात हैं, उस मौजू को जो है डिस्कस किया गया है इसमें 250 साल इंसान में। इसी तरह जो बाज़ जो आप पॉलिटिकल मूवमेंट के दरमियान जो बाज़ सख्त मराहिल पेश आए हैं, उनमें इस मुअज़्ज़मा हस्ती की जो है इस्तक़ामत और उसके जो है किरदार को डिस्कस किया, जैसे शेब अबी तालिब के कठिन हालात, और इसी तरह आगाज इस्लाम में अवाम के लिए जो अवाम की वफादारी है उस कठिन हालात के लिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में दीन का साथ देना ये बड़ी बात होती है, आसानी में तो कोई भी साथ देता है। इस्लामी तहरीक अभी आगाज हो चुका है, अभी उसके खदोखाल वाजे नहीं है, अफरादी कुव्वत में कमी है, बड़े बड़े कबाइल ने अभी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया इस्लाम को, और न कोई जोग्राफिकल टेरिटरी इस्लाम के पास है, न इस्लामी क्यादत के पास है, न कोई बहुत बड़ा पोलिटिकल कोई ऐसी स्ट्रेंथ नजर आती है, ना इकोनॉमिकली ऐसे हैं पोजिशन है, सोशली भी इसी तरह बड़े दबाव में के शिकार हैं। और ऐसे हालात में बहुत जो लोग हुजूर पाक के साथ थे, आपके घराने के साथ और बेशुमूल है इस अजीम हस्ती के, उन सख्तियों में जो है इस्लाम के साथ खड़े रहे हैं, तो ये बहुत ही अहम था। अगला जो मुश्किल मरहला आ जाता है वो दो इम्पोर्टेंट जो सपोर्टर्स थे हुजूर पाक के और इस इस्लामी मूवमेंट के और तहरीक के, वो दो अहम तरीन सपोर्टर जिनके मुख्तलिफ सेक्टर्स में बहुत ही यानी बहुत ही क्लिदी किरदार था, जनाब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और इसी तरह हजरत खतीजा सलामुल्लाहि अलैहा, उनकी जुदाई है, उनका जो है इस तहरीक का साथ छोड़ जाना और इस दुनिया से रहलत कर जाना है, और ऐसे कठिन हालात का सामना कर रही होती हैं जनाब सैयदा कायनात फातिमा जहरा सलामुल्लाही अलैहा। और इस तरह के हालात के दरमियान आपकी परवरिश, या हम लफ्ज परवरिश मुमकिन है कि बास पहलू से बसगीर के लोगों के लिए बड़ा कड़वा लगे, यानी आप परवान चढ़ रही होती हैं, फिर जो है एक माँ के किरदार में आप सामने नजर आती हैं, जो कि एक दिलसोज माँ का किरदार अदा करती हैं अपने वालिद के लिए, यानी बच्चों की बात फिलहाल नहीं हो रही, अपने वालिद के लिए एक माँ का किरदार अदा करती हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जनाब सैयदा कायनात के किरदार को रहबर मुअज्जम जिस तरीके से बयान फरमाते हैं कि रहबर मुअज्जम फरमाते हैं कि एक जनाब सैयदा कायनात जो है हुजूर पाक के लिए, जो कि इस तहरीक के रहबर और रहनुमा हैं और लीडर हैं, उनके लिए एक दिलसोज माँ के किरदार भी नजर आती हैं, एक मुशीर के तौर पर भी दिखाई देती हैं और एक जानिसार साथी का किरदार भी आपका नजर आता है। बेटी हैं लेकिन ये तीनों किरदारों के अंदर इस इस्लामी मूवमेंट के अंदर आप अपना जो हिस्सा है वो डालती हैं और क़यादत और लीडरशिप के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। और यहाँ पर एक इशारा करते हैं, फरमाते हैं कि देखें एक नौजवान लड़की के लिए आज के दौर में ये अजीम किरदार, कहते हैं हमारी लड़कियों के लिए मशाल राह है। बाप जो कि अब 50 साल के करीब है और एक जवान लड़की उसका अपने वालिद का साथ दे रही होती है, जनरेशन गैप के इश्यूज नहीं है, अगर हमें बिनमान सीरत अमली के तौर पर लेना है तो इस तरह के बहुत सारे जो टॉपिक्स होंगे वो डिस्कस किए जा सकते हैं। फरमाते हैं कि इस अजीम जवान खातून का जो मलकूती और इलाही जो मकाम और मंजिलत और किरदार है, वो कह रहे हैं कि उनकी इनकलाबी और जहादी जो जिद्दोजहद का मकाम है उससे भी ज्यादा बुलंद है। यानी दूसरे अल्फाज में कहेंगे कि उनकी जाती जो किरदार है वो इतना अजीम है कि बाज़ औक़ात देखते हैं कि हुजूर पाक जो है अपनी बेटी का जो है हाथ चूम रहे होते हैं उस अजीम किरदार की वजह से। इसी तरह जो है सैयदे कायनात के मस्जिद नबवी में बाद अज़ वफ़ात पैगंबर अकरम इस्लाम दिए गए उस अजीम खुतबे की तरफ इशारा करते हैं और फरमाते हैं कि उस खुतबे की जो फसाहत बलागत इल्मी एतबार से जो उरूज है, कह रहे हैं कि वो अभी के अभी है कि उलमा उसकी शरह और तफसीर में लगे हुए हैं। अफसोस ये है कि हमारे बरसगीर में इस खुतबे के अगर कभी बयान भी हुआ तो कुछ सिलेक्टिव हिस्से जो कि मुनाजराती बहस व मुबाहसे में ही काम आ सकते हैं, सिर्फ उसी पहलू को हाईलाइट किया गया है। उसके अंदर जो तौहीदी पहलू है, अखलाकी पहलू है, कुरानी पहलू है, उसके अंदर जो एक इल्मी खजाने पोशीदा हैं उसको जो है ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया है। इस ये जो 250 साल किताब की जो सीरीज है, इसकी दूसरी और तीसरी सीरीज में सैयदे कायनात के उस अजीम और लाजवार और बेमिसाल किरदार को लेकर मजीद कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा इंशाल्लाह। और फिलहाल इस उर्दू तर्जुमे वाली जो किताब है, पहली जो पहला एडिशन है, उसमें इसी हद तक इक्तफा किया गया है। अगला जो बहस इस किताब के अंदर मौजूद है और रहबर मुअज्जम के खिताबात का मजमुआ, उसमें इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की हयात तय्यब व ताहिर और उनका जो सियासी अजीम किरदार है उसको लेकर है। फरमाते हैं कि देखें अब जो इस्लामी तहरीक जिसका आगाज मक्के से हुआ था और मदीने में आकर एक इनकलाब की शक्ल में डल गई और वो इनकलाब जाकर आगे एक हुकूमत की तश्कील में तब्दील हो गया, यानी तहरीक चली एक और जगह में, उसका इख्तिताम इनकलाब की शक्ल में हुआ एक और शहर के अंदर, अलबत्ता उसी जुग्राफिया और टेरिटरी के अंदर ही, और फिर वहां पर जो है ये इनकलाब का नतीजा क्या निकला, एक रियासत की तश्कील में, इस्लामी रियासत और मबलिकत की तश्कील में सामने आया। यहां तक कि हुजूर पाक ने उस रियासत का जो बुनियादी ढांचा था उसे वहां पर तश्कील दिया और तरतीब दिया, और ये बुनियादी ढांचा 19-20 के साथ जो है फरमाते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर तक भी ये बुनियादी ढांचा बाकी रहा। ठीक है, इसमें मद्दोजर आ गए हैं, कुछ तब्दीलियां आ गई, लेकिन जो है बेसिक जो ढांचा था वो अपनी जगह पर मौजूद था। मक्के से जब ये तहरीक उठी थी तो फरमाते हैं कि उस वक्त मुखालिफ तहरीकें भी थी जो मक्के में भी हमें ये नजर आती हैं और मदीने में भी नजर आती हैं, لیکن یہ ساری جو مخالف تحریکیں تھیں ان میں جان نہیں تھی، یہ دبی ہوئی تھی، یہ کوئی سوسائٹی میں کوئی ایسا بحران کریٹ کر سکیں، کوئی بہت بڑا کیاس پیدا کر سکیں، یہ اتنی جان نہیں رکھتی تھی، لیکن تھیں، گروہ تھے، لوگ تھے جو آپس میں ایک ہم آہنگ تھے اور مخالف تھے، اور اسلامی عظیم تحریک اور مملکت اور ریاست اسلامیہ کے خلاف تھے. لیکن جب بعد از وفات پیغمبر اکرم اسلام ان تحریکوں نے مختلف شکلیں اختیار کی اور یہ کم و بیش مضبوطی کی طرف چلی گئیں اور مضبوط ہوتی گئیں، اور امام حسن علیہ السلام کا جب دور آ رہا تھا تو یہ کافی مضبوط ہو چکی تھی، اور انہوں نے مسلم سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ پینیٹریشن کی تھی اور اپنے لیے سپیس کریٹ کیا تھا انہوں نے اپنے لیے. اور ان تحریکوں میں سے جو نمایاں تحریک تھی اور جس کا نمایاں سرغنہ تھا وہ ابو سفیان تھا، اور ابو سفیان کے بعد پھر ان کا بیٹا آیا جو معاویہ ابن ابو سفیان ہے اور امیر شام ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سخت قسم کی مخالف، اسلام مخالف پولیٹیکل موومنٹ تھی جو کہ اسلامی ریاست اور اسلامی قدروں اور اسلامی حکومت اور سوچ کے مخالف تھی. لہذا کہہ رہے ہیں کہ اس موومنٹ کا سامنا کرنے کے لیے جو مناسب اور سکسیسفل حکمت عملی جو پاسبل تھی اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھ کر، وہ وہی تھی جو کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے اس وقت اختیار کی تھی. اور اگر اس زمانے میں امام حسن علیہ السلام کی جگہ پر اگر مولائے کائنات بھی ہوتے، مولائے کائنات کے دور میں مولائے کائنات نے مختلف قسم کی اسٹریٹجیز اپنائی ہیں، 25 سال کا ایک پیریڈ ہے، اس کے بعد کا ہے، آپ کے دور حکومت کا ہے، جنگیں ہیں، وہاں پر بحرانات ہیں، پولیٹیکل کرائسس ہے، عسکری تصادم ہے، فوج کو استعمال کرنا ہے، فوج کو میدان میں اتارنا ہے، مختلف قسم کے ہیں، کہیں خاموشی ہے، پولیٹیکل وہ ہیں، ایک موومنٹ ہے وغیرہ ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر امام علی علیہ السلام بھی امام حسن علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو یہی اسٹریٹجی اپناتے، اسی حکمت عملی کو ہی فالو کرتے جو کہ امام حسن علیہ السلام نے، کیونکہ یہی گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ میچ کر رہی ہوتی تھی اور یہی پاسبل تھا اور اسی کو ہی ہونا چاہیے تھا. در حقیقت یہ جو حکمت عملی تھی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی، فرماتے ہیں کہ اس کو تاریخ جو ہے نا عظیم مگر نرمی کے ساتھ انجام دیا جانے والا اصلاحی عمل کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے گی. یعنی ایک بہت بڑا عظیم کام تھا، عظمت رکھتا تھا، اپنے اندر بہت امپورٹنٹ تھا یہ کام، لیکن اس کی جو حکمت عملی تھی وہ بڑی نرم تھی، بڑی یعنی کول طریقے سے یہ سارا کام انجام دیا جا رہا تھا. یعنی کوئی انقلابی موومنٹ ہو، ہلا گلا ہو، سڑکوں پہ لوگ نکل آئیں، میدان سجائیں، کہیں پر گرمی شرمی بھی ہو جائے، اس طرح کی کیفیت نہیں تھی. شروع میں کچھ رہی، اس کے بعد نہیں رہی، کیونکہ ایک اصلاحی عمل تھا، لہٰذا بڑے نرمی سے اور حالات بھی جس طرح کے موجود تھے اس کے حساب سے جو ہے ایک عظیم مگر ملائم اور نرم پالیسی اور کیا کہتے ہیں ٹیکٹکس یا حکمت عملی کے ساتھ انجام دیا جانے والا مؤثر اصلاحی عمل تھا. یعنی کہ امام حسن علیہ السلام کی جو بیسک اس وقت کوشش تھی اور فوکس تھا وہ یہ تھا کہ اسلامی جو خلافت ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض، کے نجائل فی الارض خلیفہ کے، کیونکہ لفظ خلافت سے لوگ تھوڑے سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں شیعہ دنیا میں، جبکہ خلافت ایک حقیقت ہے، اسلامی خلافت تو خدا نے جو جس طرح بیان فرمایا وہ ہے. اب اس لفظ کو کوئی ہائیجیک کر کے کوئی اور میننگز پہنائے جیسے لفظ سیاست کے ساتھ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس لفظ کے ساتھ الجھنے لگ جائیں. لہذا بیسک جو امام کا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ اسلامی خلافت جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹیٹی کے ساتھ باقی رہے اور ملوکیت میں تبدیل نہ ہو جائے، ڈکٹیٹرشپ میں تبدیل نہ ہو جائے، بادشاہت میں تبدیل نہ ہو جائے. یعنی اہم ترین فوکس یہ تھا کہ خلافت کے خد و خال باقی رہیں، ولو اس کی باغ ڈور کسی غلط ہاتھ میں ہی رہی ہو، چلی جائے، لیکن وہ اپنے جو بیسک ڈھانچہ ہے، بیسک جو کنسپٹ ہے اور تصور ہے وہ باقی رہے. اور امام کی کوشش یہ تھی کہ ملوکیت میں بدلنے سے روکا جائے. ظاہر ہے کہ یہ جو ایک فکری اور پولیٹیکل تصادم تھا، اس تصادم کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ مختلف قسم کے حالات معاشرے میں جنم لیے، اور اسلامی تاریخ نے بھی مختلف جو ہے زاویوں سے تقریباً ایک بڑے ٹائم کے بعد پھر سے جنم لینا شروع کر دیا. یعنی اس میننگز میں हुजूर पाक के जमाने में जिस तरह इस्लामिक मूवमेंट शुरू हुई और ऐसा लग रहा था जैसे एक तहरीक जो आगाज में शुरू होती है, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स पे आस्ता आस्ता काम करते हुए बड़े कूल तरीके से आगे बढ़ती जाती है जब तक अपनी स्ट्रेंथ नहीं बना लेती है, तो तकरीबन इस तरह की सिचुएशन रहबर फरमाते पैदा हो गई थी। और इमाम अलैहिस्सलाम जो है मुख्तलिफ जावियों से इस इस्लामी मूवमेंट को फिर से जिंदा कर रहे थे, वही इस्लामिक मूवमेंट जिसका आगाज जो है मक्के से किया गया था, लेकिन अब इस मूवमेंट को हम कह सकते हैं कि रिफॉर्म के तौर पर जो है इमाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल या सबसे बड़ा जो मुश्किल अमल ये था कि इस वक्त सिचुएशन काफी गंभीर थी। पहले जब हुजूर पाक के दौर में ये इस्लाही यानी इस्लामी तहरीक का आगाज हुआ था तो सेक्टर्स क्लियर थे, यानी उसके हामी और मुखालिफीन आइडेंटिफाई होते थे इजीली, ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं थी, सोसाइटीज हद तक अलग हो रही थी, जुग्राफियाज बदलने लग गए थे, अफराद जो है अपनी शिनाख्त को वाजे कर रहे थे। लेकिन इस दफा बड़ा प्रॉब्लम यह था कि दीन मुखालिफ जो मूवमेंट थी उन्होंने खुद दीन को एक टूल के तौर पर लिया हुआ था, तो ये बड़ा चैलेंजेबल मसला था कि किस तरह जो है खालिस और प्योर दीन को आइडेंटिफाई करके मूवमेंट को भी उसके बेस के ऊपर उसी पटरी के ऊपर रख के चलाया जाए। तो ये एक बड़ा चैलेंज था और फर्क था जो कि इस वक्त जो इस्लामी तहरीक चल रही थी। रहबर फरमा रहे कह रहे हैं कि फरमाते हैं कि ये जो इमाम की मूवमेंट है इमाम हसन अलैहि सलाम की इस्लामी इस्लाही या रिफॉर्म या जो भी नाम दे दें, कह रहे कि ये असल में बेस बन गई है बाद में आने वाले इमामों के लिए मूवमेंट चलाने के लिए। जैसे कि ये जो कहा जाता है ये करबला के लिए ग्राउंड बनाया था इमाम हसन अलैहि सलाम ने, मगर ना करबला इस अंदाज में पेश नहीं आता और इस अंदाज में पेश आया तो भी इसके इस तरह के असरात और तासीर मुरतब ना होती पॉलिटिकली तौर पर और सोशली तौर पर और थियोरेटिकली तौर पर, यानी कि बेस बनाया था। बाकी आइमा के लिए भी ग्राउंड जो हमवार किया था वो इमाम हसन अलैहि सलाम ने हमवार किया था। लिहाजा क्योंकि कठिन मरहला था इमाम के लिए कि दीन का नाम ले रहे हैं लेकिन दीन मुखालिफ कुवतें हैं, दीन को एक टूल के तौर पर यूज कर रहे हैं और बड़ा कंफ्यूजन है सोसाइटी के अंदर। इसीलिए कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इस मूवमेंट का नतीजा ये हुआ कि जो बाद में देखें सुफियानी मूवमेंट अगर जैसे रहबर ने नाम दिया, मरवानी मूवमेंट और हत्ता जो अब्बासी जो मूवमेंट्स या अब्बासी जो दीन मुखालिफ तहरीक थी उसमें आस्ता आस्ता देखें कि एक तरफ हकीकत में वो इस्लामी तालीमात खो रही थी तो इस्लामी जो सही मुसलमान हैं जो इस्लाम की पहचान रखते हैं उनके दरमियान भी अपने वजूद को खो रही थी। ये एक तरह से जहां से इस्लामी अकदार को तबाह कर रहे थे तो जो सही मुसलमान थे सही दीन को समझते थे उनके दरमियान भी इनकी कदर कीमत जो है गिर रही थी और पहचान इनकी सामने आ रही थी। क्योंकि खतरनाक मसला है कि इस्लामी अकदार या इस्लामी तालीमात का जाहरी तौर पर एक पोल पहनकर अपनों के दरमियान अपना जैसा बनकर सामने आए और बहुत ही बिना आंखें चाहिए जो उस वक्त पहचान सकें। मिसाल देते हैं अम्मार यासिर की, मौला के दौर में कह रहे हैं कि फर्क मालिक अश्तर और अम्मार यासिर में जो बहुत सारे फर्क है उनमें से ये कि अम्मार यासिर मूवमेंट्स और हालात और अफराद और शख्सियात और वाकयात का बेहतरीन तजिया करते थे, ये सलाहियत थी उनमें, बसीरत उनकी ऐसी थी कि वो दुरुस्त अंडरस्टैंड करते थे कि भाई इस वक्त ये जो सिचुएशन है इसका आउटपुट क्या निकलेगा, क्या इसका द एंड होने वाला है, ये क्या चाहते क्या है, यानी कि ये जो है बसीरत अम्मार में दूसरों से ज्यादा नुमाया तौर पर हमें नजर आती है। लिहाजा इस्लामी जो अकदार है वो आहिस्ता आहिस्ता इन मरवानी सुफियानी और अब्बासी दो अदवार में उन्होंने एक तरह से जाहिली अकदार का खोल पहन लिया था। इस इंसान को आकिल और आलिम और बाकिरदार बनाने के जो रियासती मराकिज थे या कुवत के जो मराकिज थे वो जो है खलीफा परस्ती और बादशाह परस्ती सिखा रहे थे। उनका फोकस ये था कि अवाम सिर्फ उनसे वफादार रहे, उनकी परस्तिश करे, उनको ही सब कुछ समझे। और मिसालें देते हैं माविया के दौर में भी, दीगर लोगों के दौर में भी, कहते हैं कि मसलन माविया किसी के साथ घोड़े पे जा रहे थे और अपनी कुछ स्टोरीज वगैरह सुना रहा था तो इतने में किसी बच्चे ने पत्थर मारा और वो पत्थर जो है साथ जो बंदा चल रहा था माविया की उसकी पेशानी पे लगा, उसने हाथ भी रखा, दर्द से तकलीफ का एहसास भी किया, लेकिन वो चलता रहा, यहां तक कि खून बहने लगा। काफी टाइम के बाद माविया मुतवज्जो हुआ कि भाई उसकी पेशानी से खून निकल रहा है, और कहने लगा भाई तुम्हारी पेशानी से खून निकल रहा है। तो कहने लगा अच्छा, मुझे तो पता नहीं चला कि खून निकल रहा है। इसलिए कि वो अपने आप को खलीफा और बादशाह के सामने पाकर उसकी उसमें इतना खुद को खो दिया, यानी ऐसा गुलामाना जहन बन गया था कि वो अपनी दर्द और तकलीफ को पीछे डालते थे, कहते कि बादशाह नाराज ना हो जाए, कहें खलीफा नाराज ना हो जाए। मुक्तदिर हलकों के दरमियान अजीज लोग वो थे जो उनके गुन गाते थे, चापलूसी करते थे, और जाहिर है कि इख्तदार भी ऐसे ही लोगों में लोगों के हाथ में था जो ये पसंद करते थे कि ऐसे गुन गाने वाले, चापलूसी करने वाली अवाम और रियाया ज्यादा। ये आज भी ये सूरत हाल मौजूद है, सिर्फ उस जमाने की बात नहीं, आज भी देखें बादशाह की पहली तरजीह ये होती है कि अवाम जो है ना उसकी गुन गाए और क्रिटिसाइज ना करें, उसको हमेशा कहें सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक है। ऐसे लोग हों जो बादशाह दिन को रात कहे तो रात कहें, रात को दिन कहें तो दिन कहें। और इसका मैयार क्या है, एक यानी इसके पीछे कुछ कदासत और तकदुस या इलाही हुक्म मौजूद नहीं है, अब उसका इख्तदार बाकी रहे, ये असल में ख्वाहिश है, वो खुश रहे मेरा इख्तदार मजबूत है, इसलिए कि अवाम में कोई भी मुखालिफ नहीं है। एक अहम नुक्ता जो बयान फरमाते हैं वो ये कि, इमाम हसन अलैहिस्सलाम बुनियादी तौर पर सुलह को पसंद नहीं कर रहे थे उस वक्त, कि सुलह की जो सिचुएशन बनी थी और सिचुएशन की डिमांड तो ये थी कि सुलह की हिकमत अमली अपनाई जाए, लेकिन इमाम कबूल नहीं, यानी उसको एक पसंदीदा चीज के तौर पर इमाम के लिए ये नहीं था, लेकिन सिचुएशन ने एक तरह से पॉलिटिकली तौर पर इमाम के सामने जो रास्ता नजर आ रहा था वो यही रास्ता था। इन प्रिंसिपल इमाम नहीं चाहते थे कि इस तरह के रास्ते का सामना करना पड़े, जैसे कि मौलाए कायनात नहीं चाहते थे बाद रसूल उस तरह का रास्ते का सामना करना पड़े, इसी तरह इमाम हसन मुश्तबा भी पसंद नहीं कर रहे थे कि इस तरह के रास्ते का सामना करना पड़े, लेकिन देखा कि यही बेहतरीन चीज है और इसी रास्ते के जरिए से माविया के पलान और उसके बुरे असरात से बहुत हद तक दीन खुदा और बंदगान खुदा को बचाया जा सकता है, तो उसी को अपनाया। उसका जो मुकाबिल कोई ऑप्शन हो सकता था, वो तमाम ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा नुमाया ऑप्शन है वो मुबारजे का है, अस्करी कुवत के इस्तेमाल का है, तो उसके जो नताइज इमाम के सामने थे वो नताइज इंतहाई भयानक थे, क्योंकि सोसाइटी शायद उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती और दीनी अकदार और उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है इमाम के लिए सियासी तौर पर, क्योंकि अपोजिशन खत्म हो जाती, यानी मुक्तदिर जो हल्के हैं उनके सामने जो रेजिस्टेंस करने वाली जो कुवत है वो खत्म हो जाती जंग के नतीजे में, क्योंकि अस्करी जो कुवत थी वो बराबरी की में नहीं थी, इमाम के पास इतना बड़ा लश्कर नहीं था, इमाम के साथ देने वालों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी, नतीजा निकलता अगर ऐसा कोई इकदाम होता इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों शहीद कर दिए जाते, और जो वफादार साथी थे वो भी ऐसे थे कि वो गिनती में आ सकते थे, आराम के साथ गिना जा सकता था, वो सब भी शहीद कर दिए जाते, तो इसका मतलब नतीजे में खुला मैदान मिल जाता उनको। ये जो नर्म और मुलायम एक मजबूत तहरीक का आगाज है ये पॉसिबल ही नहीं होता, बात के लिए ग्राउंड भी हमवार नहीं हो सकता था, इनके चेहरों से नकाब भी फिर वही होते, मुकाबले में कोई और आवाज नहीं होती, जैसे वो दीन खुदा को पहचानवाते लोग उसी को हकीकत समझ के कबूल करते, मद्दे मुकाबिल उसके कोई आवाज ही नहीं निकलती, मसलन वो कह रहा है दीन खुदा का हुक्म यही है, अब मुकाबले में कोई नहीं कह रहा है भाई ये तुम गलत कर रहे हो, दीन खुदा का असल हुक्म ये है, तो जाहिर है लोगों ने फिर उसी को दीन खुदा समझना था, तो लिहाजा एक जरूरत थी कि इमाम जो है उसी हिकमत अमली को इख्तियार करते। फरमाते हैं राहबर की इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अजीम शिया जो है तहरीक या दोस्तान अहले बैत की तहरीक की यहाँ पर बुनियाद रखी, और आप एक कौल नकल करते हैं, एक मिस्री जो राइटर हैं ताहा हुसैन बड़े मशहूर हैं, उनका ये जुमला या उनका एक तज़िया है उसको पेश करते हैं, कहते हैं कि जिस वक्त इमाम शुरू कर रहे थे तो जाहिर है कि इमाम के अपने हलके में उनके अपने चाहने वालों में भी काफी सवालात खड़े हो गए थे, एतराजात भी खड़े हो गए, बहुत से लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, तो दो अफराद इमाम के शख्स पास आते हैं, ये काफी मुआसिर शख्सियात हैं, मुसैब इब्ने नजीबा और सुलमान इब्ने सुरद खुजाई। अब सुलमान इब्ने सुरद खुजाई को तो हर कोई जानता है, तवाबीन और उनके हवाले से भी और बाकी चीजों के हवाले से भी। फिर ये दो शख्सियात सामने आती हैं इमाम से मिलने के लिए और एतराज करते हैं ये कि आपको सुलह नहीं करनी चाहिए थी बल्कि आपको जंग का ऑप्शन चुन लेना चाहिए था, सुलह के नतीजे में इख्तदार उनके पास चला जाएगा और हम अपोजिशन में खड़े हो गए हैं, जबकि जो उस वक्त एक सिस्टम बन गया था खिलाफत की ट्रांसफरिंग का, उसमें भी इमाम को इमाम का जो है उस रूल और रेगुलेशन के हिसाब से भी इमाम हकदार थे। उस वक्त के ताह हुसैन कहते हैं, रबर नकल करते हैं कि तन्हाई में लेके चले गए इमाम हसन मुश्तबा, इज्तिमा से निकाल के इन दो शख्सियात को लेकर आलम गुशे तन्हाई में एक मीटिंग शुरू कर दी इमाम ने इन दोनों के साथ। जब वो मीटिंग का अख्तिताम हुआ तो ये दोनों हजरात मीटिंग से निकले तो मौरिख कहता है जी कि इनके चेहरे पर एक बड़ा इत्मीनान था, जब आए थे तो बड़े सहरा सहमगी के आलम में थे, बड़े कर्ब जदा चेहरे लेकर आए थे, जब उस मीटिंग से इमाम के साथ मीटिंग करने के बाद ये निकल के जा रहे थे तो बड़े मुतमईन चेहरे के साथ जा रहे थे, और बाद में पता चला कि ये तो दोस्तदार अहले बैत की एक तहरीक शुरू हो चुकी है, तहरीक की बुनियाद ढल गई है। यानी इमाम ने समझा दिया, देखें इस वक्त जो काम हो सकता है वो ये है मुलायम रहो, यानी जिसको कहते ना ज्यादा जो है विजिबल ना हो जाओ, ज्यादा जो है अलग उला और इनकलाबी मूवमेंट्स की तरफ ना जाओ, बल्कि खामोशी से आप बुनियादी काम करो, एक जबरदस्त किस्म की मूवमेंट हम बना लें, मुखलिसीन प्योर खालिस लोगों का, भलो तादाद में कम हो, भलो जो है वो फिलहाल जो है कोई बहुत बड़ी कुव्वत में तब्दील ना हो सक रहे हो, ऐसी कुव्वत की जो जाके इस्लामी रियासत के इख्तदार से उन लोगों को हटा दे जो गलत लोग बैठे हैं और रियासत हुकूमत और पॉलिटिकल पावर भी अपने हाथ में ले लें, ये ना हो, लेकिन कहें कि आप जहन साजी कर सकते हैं, फिक्री काम कर सकते हैं, तरबियती काम कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बुनियादी वजह लोगों में सियासी शऊर की कमी थी, रेवर फरमाते हैं कि बड़ी तहरीक एक इनकलाबी मूवमेंट के लिए ग्राउंड तैयार नहीं था, लोगों में अपनी पॉलिटिकल शऊर इतना नहीं आया था, जैसे आज भी बहुत से माशरों में पॉलिटिकल शऊर इतना नहीं है, अफसोस के साथ जो क्या कहते हैं शिया माशरों के अंदर भी। यहाँ रेवर जो है छठे इमाम की जो है एक हदीस नकल करते हैं, बयान नकल करते हैं छठे इमाम का, ये छठे इमाम का अन्नहू उस वक्त के हालात का तज्जिया फरमा रहे हैं, इल्म इमामत के साथ जाहिर है कि तज्जिया फरमाते हैं, और फरमाते हैं कि छठे इमाम फरमाते हैं वक़त हादिल अमर फी सबईन, यानी इशारा करते हैं कि देखें ये जो तहरीक थी अच्छे सालेह लोगों की, जो एक जबरदस्त किस्म की हमजहत जो तहरीक थी, इसकी बुनियाद जो है वक़त हादिल अमर फी सबईन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर से जो है इसकी बुनियाद पड़ी थी, और फिर ये उस दौर से ये जो बुनियाद पड़ी थी ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती चली गई और फिर परवान चढ़ती चली गई है ये मूवमेंट। यानी रहबर इशारा कर रहे हैं कि छठे इमाम भी इस मसले की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यानी वैसे जो बज़ाहिर तर्जमा बनता है यानी खुदा की तकदीर में ये था कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत के 30 साल और इमाम हुसैन की शहादत के 10 साल बाद हुकूमत इस्लामी की बागडोर अहले बैत को वापस की जाए, लेकिन इतना बड़ा नतीजा कब सामने आना है जब लोग अपने कस्त और इरादे के साथ यानी अपनी नियत के साथ उसके लिए मुकदमात फराहम ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला की किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, लोगों ने अपने फराइज और जिम्मेदारियां अदा नहीं की, जाहिर है जब फराइज और जिम्मेदारियां अदा नहीं की तो नतीजा भी वही मिल गया, और जबकि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दिया, यानी क़यादत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई लेकिन फॉलोअर्स ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके नतीजे में जो है जो मतलूबा नताइज सामने आने चाहिए थे मुकद्दरात इलाहिया में वो सामने नहीं आए, कानों की राहबर उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर आगे छठे इमाम की हदीस का अगला हिस्सा बयान फरमाते हैं कि फलम्मा अन कुतिल अल हुसैन अलैहि सलाम सल्लल्लाहु अलैहि इश्तदत गज़ब अल्लाह तआला अलल अहल अल अर्द फअखरहु इला 40 व 100। फरमाते हैं कि यानी ये जो काम था ये ताखिर का शिकार हो गया और 140 हिजरी तक पहुंच गया, यानी 70 साल मजीद ताखिर हो गई और बनी अब्बास के दौर खिलाफत तक ये चला गया, क्योंकि अवाम ने अपना रोल और किरदार अदा नहीं किया। ये छठे इमाम की हदीस थी जिसका जो है राहबर ने एक खूबसूरत तरीके से इसका तजिया और तहरीर जो है तजिया और तहलील पेश किया। راہبر فرماتے ہیں کہ سلح امام حسن کے بعد در حقیقت ایک نیا دور شروع ہوا ہے. اور سچویشن کیا ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں آج کی زبان میں, تو ایک آج کے اصطلاح میں اقتدار ایک پارٹی سے نکل کر دوسری پارٹی کو منتقل ہوا ہے. ایک تو یہ تبدیلی آئی, دونوں پارٹیوں میں اب فرق کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ دوسری پارٹی جو اقتدار میں آئی ہے جو کہ باطل ہے, اور اب باطل پارٹی کے برسر اقتدار آنے سے اسلامی سوسائٹی میں کیا اثرات اب مرتب ہونے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اقتدار اب ایک صالح ہاتھوں سے نکل کر غیر صالح ہاتھوں میں چلا گیا ہے, ایک غیر صالح پولیٹیکل پارٹی برسر اقتدار آئی ہے. تو اب اس کے اقتدار میں آنے کے بعد مسلم سوسائٹی اور معاشرے میں, سماج میں کیا فرق پڑے گا؟ حقیقی پارٹی کو جب اقتدار سے محروم کیا گیا تو اسے کیسے اب جو ہے کیسے جو ہے اس کا اس نے سامنا کرنا ہے؟ حقیقی جو الہی اور حزب اللہ ہی پارٹی ہے, حزب کا مطلب ہی پارٹی ہے, اللہ یعنی اللہ, حزب یعنی اللہ کی پارٹی, کس طرح وہ باطل جو کہ صاحب اقتدار پولیٹیکل پارٹی ہے اور ایک موومنٹ کی شکل میں سماج میں وہ کام کر رہی ہے, کس طرح وہ اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے ہیں؟ جو اللہ کی پارٹی ہے وہ کیسے اس کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں, کیسے حوصلے کے ساتھ ان کے تمام باطل ہتکنڈوں اور سماج کو بگاڑنے کے تمام ذرائعوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے کچھ اور سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ سوال بھی اہم ہے کہ آخر کیا ہوا کہ اللہ کی پارٹی سے اقتدار چھن گیا, اس کی وجوہات کیا ہیں, کیسے ممکن ہوا کہ صالح لوگوں کے ہاتھ سے اقتدار چھن جائے اور ناصالح اور باطل لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ برسر اقتدار پارٹی کا اپوزیشن کے ساتھ اب رویہ کیسا ہے؟ ڈیل بھی نا ظاہر ہے کہ ایک سلو ہوا ہے, تو اب رویہ کیسا ہے ان کا؟ اور فرماتے ہیں کہ یہ عبرتناک ترین جو حصہ ہے اس سارے اس دور میں, کہہ رہے وہ یہ ہے کہ جب باطل قوت اقتدار میں آ گئی تو اب وہ حق پرستوں کے ساتھ جو کہ اپوزیشن میں کھڑے ہو چکے ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ اور کس طرح کا جو ہے ان کا کیا کہتے ہیں رویہ ہوتا ہے, یہ بڑا اہم ہے. اور کلی طور پر بطور عام مسلم سماج کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے, اور اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اب اپوزیشن کا رویہ کیسا ہے برسر اقتدار پارٹی کے ساتھ. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے وہ اہم سوالات ہیں جو اس زمانے میں جو صورتحال ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ راہبر کتنی خوبصورت انداز سے اتنی گہرے پہلو کو عام طریقے سے اور آج کی زبان کے حساب سے بیان فرماتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں بعض اوقات سوچتا تھا کہ بہت زیادہ علمی قلمی گفتاری آثار رہبر کے قبل از انقلاب ہمارے پاس موجود نہیں ہے. شہید متاری کے آثار اس لیے ہم تک پورے پہنچے اس لیے کہ وہ براہ راست یونیورسٹی کے اندر ایک پروفیسر کے طور پہ تھے اور ایک ٹیم تھی جو شہید متاری کے آثار کو اس وقت محفوظ کرتی تھی, لیکچرز کو محفوظ کرتی تھی, اسٹوڈنٹ بھی کرتے تھے اس لیے کہ ان کو تھیسس کے لیے ضرورت پڑتی. لیکن رہبر کیونکہ ایک عوامی دانشور تھے اور اسی طرح کسی اس کے ساتھ اٹیچ نہیں تھے رہبر, باوجود اس کے کہ وہ یونیورسٹیز میں جاتے تھے, تو وہ جو علمی اور قلمی آثار ہیں رہبر کے وہ پورے ہم تک محفوظ نہیں رہ سکے ہیں. کہیں کوئی محفوظ کیا گیا ہے تو وہ ہم تک پہنچا ہے. واقعی کتنی عمیق اور گہری سوچ ہے, کتنی عظیم فکر ہے. یعنی واقعی عالم اسلام میں جو دانشمند جس کو ہم کہتے ہیں نا اسلامی دانشمند, شیعہ دانشمند, قرآنی دانشمند, الہی علوم کے دانشمند, اسی انداز کے ہوتے ہیں. اس روپ ایک مشتد رسالے علمیہ اور حرام حلال کے چند مسئلے لکھ کر ایک کتاب دے کر سوچے کہ بہت بڑا کام کیا ہے. اجتہاد بمانے یہ تمام پہلو اجتہاد ہے. اجتہاد وہ صرف چار مسئلے نہیں ہیں, توضیح المسائل صرف اجتہاد نہیں کہلاتا ہے. مجتہد مطلب ذمہ دار, ریسپانسبل, لیڈرشپ, قیادت ہر فیلڈ میں. ایسا نہیں ہوگا کہ میں کو فقہی مسائل مجتہد سے لے لوں, پولیٹیکل مسائل میں انتظار کرتا رہوں کوئی آئے میں مجھے لیڈ کرے, کوئی آئے مجھے گائڈ کرے اور مسائل کے اندر. تو واقعی ایک عظیم شخصیت ہیں, اور جوں جوں انسان اس طرح چیزیں پڑھتا ہے رہبر کی, وہ ان کی شخصیت کی گہرائی اور آفاقیت سے کا معترف ہو جاتا ہے. لا محالہ, یعنی یہ فطری طور پر یہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر سے نکل آتی ہیں. فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے لیے جو اہم چیز تھی اس مرحلے میں وہ دین کی بقا تھی. یعنی لوگوں میں دین کی بقا سے مراد کیا, آج ہم کہتے ہیں دین کو بچانا ضروری. خود دین کیا ہے؟ دین کسی پوٹلی کا نام ہے؟ کسی کتاب کا نام ہے؟ ہے کیا دین؟ کسی پہاڑ کا نام ہے؟ مسجد کا نام ہے؟ دین مطلب کیا؟ یعنی لوگوں میں ایمان اور صحیح ایمان اور صحیح عقیدہ باقی رہے. دین کو بچانے کا مطلب یہ ہے لوگوں کے درمیان صحیح طریقے سے عقیدہ, ایمان, دینی تعلیمات باقی رہے, یعنی معاشرہ دینی قوت اور دائرے کے اندر رہتے ہوئے آگے بڑھے. یہ امام صلی اللہ علیہ السلام کا مین فوکس ہے اس کے اوپر. اس وقت اقتدار نہیں ہے لیکن سوسائٹی کو بچا سکتے ہیں ہم, سوسائٹی کو دیندار بنا سکتے ہیں, با ایمان صحیح دین کی پہچان کروائیں, کوشش کریں سوسائٹی آؤٹ آف دین نہ ہو جائے, دینی ٹریک کو نہ بدلے. کم سے کم اقتدار ٹھیک ہے کسی اور کے پاس ہے, اگر سوسائٹی میں دینداری رہے گی تو یہ پھر جو ہے آج جو کہ دیندار اپوزیشن میں کھڑے ہو گئے ہیں یہ اقتدار میں بھی آ جائیں گے واپس, جو کہ ان کا حق ہے کیونکہ قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ اس زمین کے وارث صالح لوگ ہوں گے, نہ کہ معاویہ اور ابو سفیان اور مروان جیسے اور بنی عباس جیسے لوگ. ان کو زمین کا وارث نہیں بنایا خدا نے, زمین کے حکمران ان کو نہیں بنایا ہے. زمین کی پولیٹکس, سیاست, اقتدار, قوت, طاقت, مال غنیمت, اقتصاد, معیشت, یہ چیزیں ان کے کنٹرول میں دینے کے لیے خدا نے نہیں وہ زمین کو خلق کیا ہے. صالح ونوری دو نمن علی الذین نسوف فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین, وارث یہ لوگ ہیں, صالح لوگ وارث ہیں. تو امام کی کوشش یہ ہے. امام اب اقتدار اور کنٹرول اور طاقت کو دیکھتے ہیں کہ بھائی پاسبل نہیں ہے, تو لہٰذا اب یہ ثانوی مسئلہ ہے, سیکنڈری مسئلہ ہے, اس کو سامنے رکھیں. دینی حاکم مثلاً کو ہم صحیح صالح بندے کو حاکم بنانا چاہ رہے تھے, وہ اب ثانوی سیکنڈری مسئلے میں چلا گیا ہے. اب جو پاسبل ہے اس وقت یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارا فوکس سارا یہ ہونا چاہیے کہ دینی اقدار باقی رہیں اور لوگوں میں دینی اقدار کی بہتر سے بہتر طریقے سے پہچان رہو. اب مقابلے میں جو برسر اقتدار باطل پارٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے, ان کی کوشش یہ ہے بھائی جو بھی ہو جائے, جس طرح بھی ہو جائے, اقتدار ہمارے پاس رہے, طاقت کے مراکز کا کنٹرول ہمارے پاس ہو, خزانے کا کنٹرول ہمارے پاس ہو, مسلم سوسائٹی کی حکمرانی اور اقتدار اور کرسی ہمارے پاس ہو. اس کے لیے وہ کسی بھی ہتکنڈے اور وسیلے اور ذریعے کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں, جائز ناجائز سب چلتا ہے ان کے لیے. جیسے آج بھی کہتے ہیں سیاست میں سب کچھ چل سکتا ہے, کہتے ہیں سیاست کوئی وحی اور قرآن اور اصول اور فلان فلان حدیث تو نہیں ہوتے. یہ باتیں آج بھی ہو رہی ہیں, بس دھڑلے سے کہتے ہیں, بڑی بے شرمی کے ساتھ پولیٹیشنز یہ باتیں کرتے ہیں. اس وقت وہ بڑی بے شرمی, آج بے شرمی سے یہ کہتے ہیں کہ لوگ تعجب نہیں کرتے, تو اس وقت یہ بے شرمی سے کہتے تھے سیاست کے لیے سب جائز ہے, کوئی ایشو نہیں, کوئی اصول ہو, ضابطہ ہو, اقدار ہو, فلان ہو, فلان, 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 فلان کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا جو ایک بڑا مسئلہ اس وقت سامنے رہا تھا, پروپیگنڈے کا ماحول تھا. اہل حق کے جو کہ اپوزیشن میں سرکاری مشینری کے ذریعے سے پروپیگنڈا, پہلے بھی یہ مسئلہ رہا تھا مولائے کائنات کے لیے رہا, اور اب اور تیز تر ہو گیا ہے, اب اور اس میں انکلوڈ ہو چکے ہیں اور شخصیات بھی اور افراد بھی, تازہ ترین جو سچویشن ہے, تازہ ترین جو اپوزیشن ہے وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو چکی ہے, پروپیگنڈا ہے. اب اس پروپیگنڈے کے اندر عمار یاسر جیسی شخصیات چاہیے جو بابا سیرت ہوں, جو ان حساس معاملات کو درست طریقے سے, آج ہم نہیں کر سکتے ایسا. اب میں بتا نہیں, مجھے یہ اس طرح اشارے میں بات کروں کو غلط میننگس نہ لے لے. مثلاً ابھی کچھ عرصہ پہلے عراق میں ایک بڑا بحران اور کرائسس نے جنم لیا تھا, بغداد کے اندر وہ تھے ہمارے عظیم شخصیات کی اثر غیبت میں تصویریں جلانا وغیرہ, نعرے لگانا وغیرہ, حتیٰ دین مخالف نعرے لگانا, حتیٰ جو ہے بعض قبروں پر حملے کرنا. عجیب ہے, بڑی علماء سید شہید آیت اللہ باقر الحکیم کی قبر پہ حملہ کرنا, ان کو جلانا چاہتے ہیں ہم, توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں وغیرہ, اور کرنے والے کون ہیں؟ کوئی داعش نہیں آئی ہے, وہ شیعہ جوان آخر میں. اب اس کی تجزیہ و تحلیل کریں تو سنسیٹیو اور حساس پہلو آ جاتے ہیں, اور ہمیں پتا ہے کہ بڑے اچھے جہاں دیدہ سمجھدار لوگ بھی یہ تجزیہ ہضم نہیں کر پائیں گے اگر ان کو حقائق سامنے لا کے بیان کیا جائے کہ سب کے پیچھے کیا مسائل ہیں, کہاں کہاں استعمار ہے, سامراج ہے, اور اندرونی طور پر کن کن سیکٹر میں ویکنیس تھی, کس کو کیا رول ادا کرنا چاہیے تھا جو ادا نہیں ہوا وغیرہ. اگر اس کا تھوڑا سا تجزیہ کیا جائے تو بڑے حساس معاملات بن جائیں گے, بہت سے لوگوں کے لیے ہضم نہیں ہو پائے گا. تو ایک ایسے ماحول میں عمار یاسر, این عمار, این عمار, یہ جو مولا کے جملے ہیں اس کے پیچھے, یہ عمار بابصیرت شخص تھا, حضرت عباس علمدار جو چیز ہم نے ایک پہلوان اور ایک زبردست فائٹر کے طور پہ ہمیشہ پریزنٹ کیا ہے، سب سے بڑی جو صفت ائمہ معصومین نے بیان کیا ہے شجاعت سے پہلے ان کی بصیرت کو بیان، نافذۃ البصیرت ہے حضرت عباس، سب سے بڑی رحم اللہ عمی عباس کانت نافذۃ البصیرہ، یعنی پہلی جو صفت بیان کی شجاعت اور اس سے بصیرت کو بیان کیا ہے. مالک اشتر اور عمار یاسر میں مقایسہ کی، مالک اشتر ایک کمانڈر ان چیف شجاع بہادر جری بصیرت بھی تھی، لیکن لیول بصیرت کا عمار یاسر کا مالک سے زیادہ تھا. اسی لیے مولا جب آواز دیتے ہیں تو اے نا عمار، عماریون، عمار، یہ بہت بڑے بصیرت ہے. اس طرح کے ماحول میں، پروپگنڈے کا ماحول ہے، اقتدار غلط قوت کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، اپوزیشن میں اہل حق و صالحین اپوزیشن میں کھڑے ہیں، دباؤ کا شکار ہیں، سوسائٹی بھی دباؤ کی شکار، سوسائٹی کی جانب سے بھی، لوگوں کی جہالت و بے شعوری کی جانب سے بھی. اب ایسے معاملات میں درست تجزیہ کرنا اور درست راستے کی پہچان کرنا اور گپ اندھیرے کے درمیان اس کالے صحیح بال کے برابر جو صراط مستقیم ہے اس کی شناخت کر کے خود کو اس کے اوپر ڈھالنا، یہ عمار یاسر کا کام ہے، یہ عمار جیسے افراد کا کام ہے. تو اس وقت یہ امام حسن کے دور میں اس طرح کی جو شکل و صورت ہے. اگلا جو پوائنٹ بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ باطل پارٹی کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے جو کھڑا کیا تھا وہ ظاہری طور پر اسلامی شکل و صورت میں تھے، اندر سے ایک اپنے جو شوم عزائم ہیں ان کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، اس لیے بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ ظاہری طور پر بڑے جو ہے. آپ دیکھیں ایسے ٹی وی چینل کھلے ہوئے ہیں جس میں 24 گھنٹہ امام حسین کا نام ہوتا ہے، نام ہی کربلا چینل ہے اس کا، امام حسین چینل، امام مہدی چینل، کون اس کی بارے میں سوچے گا کہ بھئی یہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر، کربلا کے نام پر جو چینل کھلے ہوئے ہیں یا بعض اس طرح کے اور کھلے ہیں، تو اس کے پیچھے اصل میں باطل افکار کو پھیلایا جا رہا ہے، باطل پارٹی کا یہ جو ہے اتکنڈا ہے. کون سوچ سکتا ہے، ہمارے اپنے لوگ لڑنے پہ آ جاتے ہیں، کہتے آغا صاحب یار آپ لوگ ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں، آغا صاحب یار ہمیشہ آپ لوگ جو ہے نا چند مخصوص شخصیات کے علاوہ باقی سب کے اوپر انڈر کوشن آپ لگا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب کیسے انسان اس کو وہ کرے ڈیفینڈ، واقعی ایک بڑا پیچیدہ، آج بھی ہے یہ، صرف امام حسن علیہ السلام کو نہیں، وہ بھی باطل کی پارٹی اقتدار میں، معاشرے کی اکثریت ان کے ساتھ کھڑی ہے. رابر فرماتے ہیں باطل پارٹی کی ایک اور جو انہوں نے وہ کیا، اقتدار پرستی ہے، جبکہ مقابلے میں جو حق پرست ہیں، حزب اللہ ہیں یا اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کی اقدار پرستی ہے، اقتدار پرستی بے مقابلے اقدار پرستی. یہ اقدار کو معاشرے میں لانا چاہتے ہیں، وہ اقتدار کو اپنا بڑھانا چاہتے ہیں. طاقت کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے باطل کو پارٹی کے ساتھ، جو برسر اقتدار ہے وہ پوری ریاستی مشنری کو اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کرتی ہے، قومی خزانے کو اور قومی دولت اور عوامی دولت کو استعمال کرتی ہے لوگوں سے حمایت خریدنے کے لیے، پارٹی بڑھانے کے لیے، اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے، آج کی زبان میں اگر بات کریں اپنے حامی بڑھانے کے لیے. ظاہر اس وقت بیعت کا طریقہ تھا یہی، ووٹ کا جو طریقہ ہے، حمایت حاصل کرنا تھا، مخالفت کو دبانا تھا، مخالفت کم کرنے پیسے دیے جاتے تھے، جھوٹا پروپگنڈا تھا، سیاسی اوچھے ہتکنڈے، کوئی لمٹ نہیں رکھی، اخلاقی ساری لمٹ کو کراس کرتے تھے. جو اقتدار میں ہے، قوت ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، ریاستی مشنری ہے، اور لمٹ بھی نہیں ہے، کوئی اخلاقی بیریئر نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ شریر طور پر نہیں ہے. جو اپوزیشن میں ہے وہ شرعی حدود کو بھی دیکھ رہی ہے، اس اقدار کو پھیلانا بھی چاہتی ہے، اور ان وہ دباؤ کا بھی شکار ہے، عوام سے بھی دباؤ کا شکار ہے، سماج سے بھی دباؤ کا شکار ہے، پولیٹکس کل میدان میں دباؤ کا، ریاست کی طرف سے دباؤ کا شکار ہے، اور یہ دباؤ ہر جانب ہے، اقتصادی دباؤ ہے، ثقافتی دباؤ ہے، فکری دباؤ ہے، سماجی دباؤ ہے، یہ سارے دباؤ کے اندر کام، یہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے امام معصوم جیسی کوئی قیادت چاہیے جو لیڈ کرے، تب یہ موومنٹ بنیاد پڑے اس کی. سلمان ابن سرد خزائی ہو یا مسیب ابن نجیبہ جیسے افراد، اکیلے ان کی بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے امام حسن مجتبیٰ جیسی ایک الہی قیادت چاہیے، وہ لیڈ کرے گی تو اس کی بنیاد پڑ سکتی اور پڑ گئی. اسی لیے امام حسن علیہ السلام نے بنیاد ڈالا. کچھ جو ہے تاریخی مثالیں پیش کرتے ہیں جس میں حق کی تحریک کا جو طریقہ کار تھا، اس قسم کی ماحول اور پروپگنڈوں اور حربوں کا مقابلہ کرنے کا، वो उनका तरीके कार क्या था, यानी क्या उन्होंने मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की बातिल के इस दबाव और इस किस्म के हरमों के मुकाबले में। पहला पॉइंट बयान फरमाते हैं राहबर, वो ये है कि फर्स्ट ये है कि खामोशी अख्तियार नहीं की है, बिल्कुल खामोश हो गए, ला ताल्लुक हो गए, ला ताल्लुकी अख्तियार करना ये सबसे आसान काम। और हमारे यहां आजकल जो है ना इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाजुबलागा का एक जुमला भी लाया जाता है, बादकुन फिल फितनति का इब्न लबून, फितने के वक्त ऊंट का बच्ची बन जाओ, ना कोई सवारी कर सकता है ना कोई दूध दो सकता है। बाबा इसका मतलब ये लिया है। खुद राहबर एक और स्पीच में मुझे याद है, तालिबन जुमे का खुतबा था या किसी ईद का खुतबा था, उसमें इस जुमले की तशरीफ फरमाते हैं और वाकई क्या जबरदस्त तशरीफ फरमाते हैं। इंसानी जहन खुल जाता है, लगता है कि उसके सामने एक रोशनी आ गई है इल्म की, और वो उस बात यही हदीस सुबह शाम इसी को पढ़ते थे और इसी के माने इसी तरह ले रहे थे। अचानक जो है राहबर जैसी एक अजीम शख्सियत आती है जो जिसका ऐसे आलिमाना तशरीह करती है कि इंसान के सामने एक पूरा दरिया एक ओशन खुल जाता है, तो अल्लाह अकबर हमारी तवज्जो इस तरफ क्यों नहीं गई, हम हमारा दिमाग इस तरफ गया ही नहीं इस जुमले के इस पैरों के। ये असल में ये फरमा रहे हैं, ये बात है जो असल में क्लिक करती है इंसान के अकल को इल्म को फितरत को कि भाई ये असल तशरीह है इसकी। तो वो इस तरह खामोशी अख्तियार, ये काफी अहले हक ने खामोशी अख्तियार नहीं की, अपोजिशन में थे लेकिन खामोश नहीं रहे, मुजाहमत जारी रखी, दो टोक शफाफ क्लियर मौकिफ रखा हुकूमत के बारे में, हुकूमत के इकदाम के बारे में क्लियर मौकिफ है इमाम हसन मुश्तबा का, शफाफ है, दुगानगी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग करने के लिए कोई या गलत उसका सुई इस्तेफादा करे ये पॉसिबल ही नहीं है, क्लियरली मौकिफ बयान फरमा रहे हैं। सुलोनामे के अंदर जो बुनूद डाले वो डाले, वो अपनी जगह है, उसके बाद जो आपकी रविश है, तरीकेकार है, गुफ्तार है, किरदार है, अमल है, वो शफाफ है, समझने वाले को वाज तौर पर बता रहे ठीक है ये इकतदार में है लेकिन हम इसको बातिल समझते हैं, कबूल नहीं करते, शरी तौर पर कोई लेजिटिमेसी इनके पास नहीं है। मुसलसल तबलीग जारी रखी मुश्किलात के बावजूद और मुसलसल तबलीग, और बड़ा कठिन मसला था तबलीग को जारी रखना, क्यों, हक के मुबल्लिगीन को हर दौर में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो अवाम पसंद बातें नहीं कर सकते हैं, अवाम के मिजाज को अच्छी भली लगने वाली इंजॉयमेंट पैदा करने वाली खुश रखने वाली झूठी दिलासे देकर झूठी बातें करके ये कभी भी हक के मुबल्लिगीन, हक के मुबल्लिगीन हक बात करेंगे, हक तो कड़वी है बोला फरमाते हैं अल हक मुर, कहा कि हक जो है कड़वा होता है, अल हक दुर्रुन वलो कान मुर्रुन, कहा कि उस कड़वाहट के अंदर असल में वही मोती है वही हकीकत है। लेकिन बातिल के मुबल्लिगीन के लिए रास्ता खुला है, अक्के के प्याज मक्के में बेचने से लेकर झूठी अहादीसें गढ़ने से लेकर खुलफा की बादशाहों की इख्तदार में बैठे हुए टोले के शान में ऐसी ऐसी हदीसें गढ़ना, इसराइलियात गढ़ना, खुला मैदान उनके सामने, झूठ बोले, पैगंबर को निस्बत दे दें, कुरान की आयत को तोड़ मोड़ के पेश करें, तौहीद पढ़ाएं, शिर्क को छुपाएं। अच्छा अगर हुक्मरान इस्लामी हुक्मरान साहब जो है बुत बनाकर इंडिया बेच दे बरसगीर की तरफ, बुत परस्तों की तरफ बेचे तिजारत करने के लिए और कहे यार बुत आप बुत फरोशी कर रहे हैं, बुत बनाकर बेच रहे हैं, ये तो हशरन हराम है वकी तौर पर, ये तो नहीं कर सकते हैं, तो कहे कि नहीं हुक्मरान जो फैसला करता है वही है। मुर्जा जैसे फिरके वजूद में वही आखिर ही इनके सामने इनके मुबल्लिगीन अवाम पसंद बातें करते हैं, अवाम खुश, एंटरटेनमेंट मिल रही है उनको, बेहतरीन जन्नत भी मिल रही है, खुश भी है, दुनिया भी है, दीन भी है, खजाने भी हैं, दस्तरखान भी सजे, सब कुछ है माशाल्लाह से। इशारा करते फरमाते हैं कि वो लोग जो पैगंबर खुदा के दौर में सब कुछ दीन पर लुटा रहे थे और जिनकी समाजी और इकोनॉमिकल सिचुएशन एक आम मोतदिल अफराद की थी, जब इस दौर में आते हैं तो वो ट्रिलियनर बन जाते हैं, खरबपति बन जाते हैं, बास के सोना जब उनके मरने के बाद उनकी जायदाद को तकसीम किया जाता है तो जो प्योर गोल्ड उनके पास होता है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड करने के लिए कुल्हाड़े और पता नहीं क्या क्या लाना पड़ता है, फावड़े कि काट काट कर उसको तकसीम किया जाए, कितना सोना इकट्ठा किया था उसने, ट्रिलियनर से ऊपर हर आदमी बिलगेट से ऊपर चला गया हुआ था इस दौर में आके, इतना खजाना उनके पास है, जबकि इस्लामी सोसाइटी की जो आम मैशती सिचुएशन है वो उसी जगह में पड़ी हुई है। लिहाजा हक के मुबल्लिगीन के लिए रास्ता छोटा है, अवाम भी पसंद नहीं करते, कहते यार ये हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं, वो उसके पास उस मुकर्रर को बुलाओ, उस मुबल्लिग के पास चलो, वो दिल खुश करा देता है, भेष भी दो कौड़ियों में बेचता है, दुनिया में भी इबादतें भी दो कौड़ियों में कबूल कराता है, वो बड़े बड़े मकामात दो दो पौड़ियों में भेज के चला जाता है, वो तो सस्ती सस्ती कीमत पे दे देता है। मौलाए कायनात के एक जुमला नकल करते हैं, चंद मिनट हमारे पास हैं, तेजी से हम इख्तिताम की तरफ जाएं। मौलाए कायनात के एक जुमला नकल करते हैं इसी मौजू पर, राहबर मुअज्जम इंकलाब फरमाते हैं, मौलाए कायनात नहजुल बलागा में फरमाया था, लौ लत्तका लकुंतु अदहला रब, बड़ा मशहूर जुमला है। मौलाए कायनात फरमाते हैं, अगर मसला अखलाकियात का, शरई हुदूद व कयूद का, तकवा व परहेजगारी का ना होता, लकुंतु अदहला रब, मैं अरबों में सबसे ज्यादा चालाक होता। ये जो आप समझते हो कि सबसे ज्यादा जो चालाक है, मक्कार है, धोखेबाज है, वो सबसे ज्यादा कामयाब है, सक्सेसफुल इंसान है, कहा कि ये शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हुदूद व कुयूद नहीं है, कोई अकदार नहीं है इनके पास, सिर्फ इख्तदार है इसके पीछे, उसके लिए हर चीज जायज करार दिया। लौला तुका लकुन तो आधा ला रहा, ये जुमला नकल करते हैं। अकदार का तहफुज, कदरों का तहफुज हक परस्तों के लिए इंतहाई अहम था, इस हद तक कि अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हुए, तैयार थे और तैयार रहे और तैयार आइंदा भी रहेंगे। रबर फरमाते हैं, देखे मिसाल देते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस अजीम जुमले का जो करबला में इरशाद फरमाया, कहें देखें इस्लामी कदरें और अकदार इतनी अजीम थी, अपोजिशन में होने के बावजूद इस अकदार के लिए अपनी जान देने के लिए, कुंबल उठाने के लिए तैयार थे, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। कभी कहा कि मैं या अब अल्लाह लना दालिक, माया कि हयात मिन्ना जिल्ला, जिल्लत जलीलाना जिंदगी, बेदीन जिंदगी यानी जलीलाना जिंदगी, अकदार इंसानी वो इस्लामी वो इलाही को पामाल करके गुजारने वाली जिंदगी यानी जलीलाना जिंदगी। बंदे खुदा होने के बावजूद, आजाद बंदे खुदा होने के बावजूद एक बदकिरदार हुक्मरान का गुलाम बनकर गुलामाना जिंदगी, और उसके झूठ पर भी को भी सच कहना, उसके सच को जो है को भी हिमायत करना, गलत की भी हिमायत करना, सही की भी हिमायत करना, ये जलीलाना पास्त जिंदगी है। और माया की या अब अल्लाह लना दर, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। अल आर औला मिन दुखूल नार, और माया अल मौत औला मिन रुकूब लार, हाँ कि हो सकता है बेहतर है, अल मौत औला, मौत बेहतर है भाई, मैं आर कबूल करूं, ऐसे पस्त की हुक्मरानी कबूल करूं, ये एक्सेप्ट नहीं है उसकी हर पॉलिसी को कि हाँ मैं हाँ मिलाऊं उसके साथ हमेशा दे दूं, कहा ये नहीं है। हाँ फिलहाल हम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो मुलायम और नरम तरीके से अपना, हमारे जमाने में अंदरों ने खाना, अपनी मूवमेंट हम बना रहे हैं, बेस तैयार कर रहे हैं। पर के इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तहरीक अवामी बसीरत और शऊर की कमी के सबब क्या हो गई कि शिकस्त खा गई, नाकाम नहीं हो सकी। या अगर किसी बरसगीर के लोगों को लफ्ज शिकस्त हजम नहीं होता है, मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकी, तो मैं थोड़ा सा अदबी कर लेता हूँ, मतलूबा नताइज तक नहीं पहुंच सकी, यानी कि इमाम की नाकामी है, लीडर की नाकामी नहीं है, लीडर को फॉलो करने वालों की नाकामी है। क्योंकि इसके दो सेक्टर्स हैं, एक लीडरशिप है, एक फॉलोअर्स हैं। कुछ ड्यूटीज लीडर की हैं, कुछ फॉलोअर्स की हैं। लीडर और फॉलोअर्स दोनों की ड्यूटियां इकट्ठी होंगी तो यह नतीजा निकलेगा। लीडर ने अपना काम किया, फॉलोअर्स ने नहीं किया, नतीजा नहीं निकला। गलती किसकी है, शिकस्त किसकी, फॉलोअर्स की। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, गदीर की इस आयत को न भूलें। वल्लाहु, पैगंबर ने फरमाया था फॉलोअर्स फॉलोइंग नहीं करेंगे, तनहा छोड़ेंगे, कूफी बनेंगे, शामी बनेंगे, पता नहीं जगह जगह पर पैसों के पीछे जाएंगे, वल्लाहु यासिमुका, लेकिन अल्लाह बचाएगा, अल्लाह हिफाजत करेगा। हमेशा जो है अकदार के पासदार लोग, हकपरस लोग हमेशा आते जाते रहेंगे। बरसर इख्तदार पार्टी ने अपोजिशन को दबाने के लिए यानी तशद्दुद से भी काम लिया है, टॉर्चर किया है इस इमाम हसन के दौर में, चुन चुन कर सेलेक्ट करके इमाम के मानने वाले, थोड़ा सा नरम गोशा रखने वालों को टारगेट किया जाता था। लिहाजा जो है एक ऐसे दौर में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जिस तहरीक का आगाज किया उसका जो तसलसल था वो फिर थमा नहीं, बुनियाद डाली इमाम हसन ने एक रिफॉर्म करने की। दिगर अइमा के दौर में भी ये नतीजा इसी तरह, ये जो तहरीक एक नतीजे की शक्ल में चलती रही और आज भी ये कायम और दाइम है मुख्तलिफ शक्ल और सूरत में। और बातिल जो तहरीक थी, बावजूद कोशिश के कि वो खुद को एक इस्लामी पार्टी के तौर पर पेश करना चाहते थे, कुरानी पार्टी, रिसालत की पार्टी, नबुवत की पार्टी, खुदा की पार्टी, लेकिन उनके चेहरे से नकाब हटाकर उनको एक बातिल पार्टी, अब्बासी पार्टी, उमवी पार्टी, सुफियानी पार्टी, मरवानी पार्टी के तौर पर आइडेंटिटी उनकी क्लियर कर दिया इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने। यह बेहतरीन एक पॉलिटिकल منہ تھی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی کہ انشاءاللہ اس کے بعد جو حالات ہیں وہ اگلے جلسے میں پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.